पृष्ठ संख्या 66। ऊपर की कविता में तो अपने दान का, अपने द्वारा दी गई समृद्धि का कहीं न कहीं एहसास है, लेकिन इस गीत में पूरे वृक्ष के सूखते और पृथ्वी में धंसते जाने की अवसन्न कर देने वाली अनुभूति को कवि ने व्यक्त किया है। यहाँ तनु का तरुदल कहकर कवि वृक्ष के अपने जीवन बिंब को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। ऊपर वाले गीत में इस बात की तीखी अनुभूति है कि अब यहाँ कोमल या शिखी नहीं आते, अब इसकी स्वर झनकार हमेशा के लिए बंद हो गई है। सिर्फ उसके अतीत की समृद्ध स्वर लहरियों की अनगूज स्मृति शेष रह गई है, लेकिन इस दूसरे गीतों में उस सूखे हुए वृक्ष पर फिर कोयल बैठी हुई है। कवि फिर से अपने स्वर से पूरे संसार को सिक्त करना चाहता है, लेकिन उसे अपने ही स्वर की बुढ़ाई देखकर आश्चर्य और एक घनी उदासी घेर लेती है। उसे लगता है अब उसकी स्वर झनकार और उसका जीवन वृक्ष दोनों ही विस्मृति और विनाश के गर्भ में गगन मंद चरणों से चलते हुए विलुप्त होते जा रहे हैं। आत्मक्षय की इतनी तीखी पृष्ठ संख्या 67 गहरी अनुभूति की अभिव्यक्ति अभी तक मुझे किसी भी भारतीय या विदेशी कवि में कहीं नहीं मिली। दुखता रहता है अब जीवन, पतझड़ का जैसा वन उपवन, झरझर कर जितने पत्र नवल कर गए रिक्त तनु का तरुदल, हैं चिन्ह शेष केवल संबल जिनसे लहराया था कानन, डालियां बहुत सी सूख गईं, उनकी न पत्रता हुई नई, आधे से ज्यादा घटा बिटप बीज को चला है ज्यों छड़ छड़, यह वायु वसंती आई है कोयल कुछ छड़ कुछ गाई है, स्वर में क्या भरी बुढ़ाई है दोनों ढलते जाते उन्मन। पराजय असन्नता उदासी अपमान की इसी प्रक्रिया से होते हुए निराला एक कारुणिक आत्मजर्जरता तक पहुँचते हैं। उस ठूंठ पर बैठे हुए अपशकुन के उस गिद्ध की याद उन्हें कभी कभी आती है जिसका एहसास कभी शुरू शुरू में उन्हें हुआ था। उनमें जीवन की व्यर्थता निरस्ता और असरता का ज्ञान जगता है जो जीवन तंद्रालस लालसा और अमृत रस से भरा हुआ था, जो स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रहता था उसमें कहीं कोई रोशनी नहीं है, सूरज चांद सितारे सभी डूब गए हैं, केवल एक सनसनाता हुआ अंधेरा संपूर्ण जीवन आकाश पर फैला हुआ है। संसार को सिक्त करने वाला वह स्वर वह राग धूल धूसरित कुछ यों पड़ा हुआ है कि अब उसे उठाते ही लज्जा घेर लेती है। इस आत्मपतन का कहीं अंत नहीं है, यह लज्जा सारे अंतर मन में रग रग में धूल के किरकिराते कणों की तरह छा गई है। कभी उन कणों को सूक्ष्मतम ढंग से रेंग रेंग कर सारे तन मन में छा जाने के लिए छई शब्द का आविष्कार करता है। लज्जा असन्नता और आत्मजर्जरता में अपना यही कारुणिक अवसान निराला ने इन गीत पंक्तियों में चित्रित किया है। एक निशदिन तन धूल में मलिन छीण हुआ छन छन मन छिन छिन। पृष्ठ संख्या 68। व्यर्थ हुआ जीवन यह भार, देखा संसार वस्तु वस्तुतः असार, भ्रम में जो दिया ज्ञान में लो तुम गिन गिन दो, खड़ी है दीवार जड़ की घेर कर, बोलते हैं लोग ज्यों मुंह फेर कर, इस गगन में नहीं दिनकर नहीं शशधर नहीं तारा, गहन है या अंधकारा। 3. भर गया है जहर से संसार, जैसे मार खाकर देखते हैं लोग लोगों का सही परिचय ना पाकर। 4. तूली तूली के सुस्वर गीत धूल के धूसर, वाणी में मरु प्रांतर छई है विषण लाज। इसी मनोभूमि से निराला मृत्यु और शरणागति की कविताओं में उतरते हैं। इन दोनों मनोभूमियों के प्रारंभ की सशक्तम अभिव्यक्ति निम्नलिखित कविता में हुई है। भग्न तन रुग्ण मन जीवन विषण वन, क्षीण क्षण क्षण देह जीर्ण सज्जित गेह, घिर गए हैं मेह प्रलय के प्रवर्षण, चलता नहीं हाथ कोई नहीं साथ, उन्नत बिनत मात, दो शरण। पृष्ठ संख्या 69, मृत्यु संबंधी गीत। निराला के मृत्यु संबंधी गीतों पर विचार करने से पहले हम मृत्यु की वास्तविक स्थिति पर थोड़ा विचार करेंगे। इस शताब्दी से पहले की संपूर्ण कला खोज अथवा कलाकार का बृहद असंतोष दो रूपों में प्रतिफलित हुआ है। या तो अपनी रचना के माध्यम से वह सौंदर्य व्यापक अर्थों में की उपासना में लगा रहा है, अथवा प्रभु की। सौंदर्य और प्रभु की उपलब्धि ही हर महान कला की अब तक की अंतिम उपलब्धि रही है। पश्चिम और पूर्व दोनों ही अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं और समय के अंतर संबंधों के अनुकूल कला रचना के द्वारा सौंदर्य और प्रभु के इसी प्राप्तव्य की ओर संकेत करते हैं। अंततः सौंदर्य और प्रभु जीवन की संपूर्ण खोज के दो बिंदु हैं। रचनाकारों ने इन्हें ही रचना के अंतर्गत क्रमशः रस और अर्थ के प्रतीक के रूप में उपलब्ध किया है। अपने सारे भौतिक ज्ञान और अनुभव की निरर्थकता का अंतिम खौफ अंततः संवेदनशील मनुष्य को रस और अर्थ की खोज में भटकाता हुआ उसका विकल्प ढूंढने की ओर उन्मुख करता रहा है। अपने ज्ञान की शक्ति और विचार की इसी सीमा और निरर्थकता की सरहद पर जाकर आदमी ने सौंदर्य और प्रभु की अमर कभी नष्ट न होने वाले फैंटेसी का आविष्कार अपनी कला और अपने विचार स्रोत के भीतर से किया है। आदमी की अपनी सीमा और लघुता का गहरा एहसास ही उसे असीम शक्तिशाली और अमर फैंटेसी की रचना कराता है। मृत्यु आदमी की सीमा और लघुता का एहसास कराने वाली सबसे भयावह स्थिति है। जीवन ज्ञान और संघर्ष इन सब के मूल में मृत्यु की भावना अथवा उसका खौफ ही काम करता है। मानव अस्तित्व की सीमा रेखा इसी ने स्थापित की है। हमारे सारे ज्ञान आनंद का उपहास, अस्तित्व का मजाक यह मृत्यु ही है। इसीलिए इसके ऊपर इसे काट कर जीवन को स्थापित करने की लगातार चेष्टा कवि कलाकार करते रहे हैं, क्योंकि मृत्यु एक भयंकर अर्थहीनता को जन्म देती है, एक भय की निरंतर मना स्थिति का निर्माण करती है। इसीलिए मृत्यु मानव चिंतन का सबसे प्रमुख विषय है। इस निरर्थकता और भय की शाश्वत मना स्थिति को काट फेंकने के लिए ही रचनाकारों और मनीषियों ने सौंदर्य और प्रभु की शाश्वत प्रतीक फैंटेसी की परिकल्पना की है। इस तरह सौंदर्य और प्रभु की परिकल्पना एक प्रकार से मानव अस्तित्व पर एक विराट प्रश्न चिन्ह रखने वाली मृत्यु की स्थिति के खिलाफ मनुष्य का एक शाश्वत विद्रोह भाव है। मृत्यु की इसी खौफनाक स्थिति से ऊपर उठकर पिछली सभी शताब्दियों के रचनाकारों ने सौंदर्य और प्रभु को एक नाशहीन प्रतीक के रूप में स्थापित और उपलब्ध किया है। सौंदर्य और प्रभु की इस फैंटेसी को मृत्यु नष्ट नहीं कर पाती, क्योंकि दोनों मृत्यु की सीमा से परे एक अनजान सीमाहीनता में रूपायित हुए हैं। मृत्यु उसे छू नहीं सकती, यदि मनुष्य उसे अपनी अंतिम आस्था के रूप में पकड़ता। पृष्ठ संख्या 70 है तो मृत्यु उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु की स्थिति को जीवन से निष्कासित नहीं किया जा सकता। अतः जीवन से पृथक या बाहर जीवन की आस्था बनाए रखने का प्रतीक ढूंढ निकालना मनुष्य के लिए आवश्यक हो गया। स्थूल और भौतिक जीवन से परे प्रभु की फैंटेसी की परिकल्पना इसीलिए की गई, क्योंकि वहां मृत्यु के खूंखार पंजे नहीं पहुंच सकते। इसीलिए चिंतकों और कलाकारों ने सौंदर्य के विचार को भी अंततः प्रभु की फैंटेसी ही निरूपित कर दिया। इस प्रकार प्रभु अपने संपूर्णतम रूप में मृत्यु के खिलाफ मनुष्य की आस्था का प्रतीक बन गया। लेकिन 20वीं शती के ज्ञान विज्ञान की प्रक्रिया ने ज्ञान की सीमा से परे फैंटेसी में रूपायित प्रभु की इस परिकल्पना पर फिर एक बार शंका उत्पन्न कर दी। सौंदर्य और प्रभु की गरिमा मृत्यु के खौफ को खत्म नहीं कर सकती। यह तर्कातीतता एक प्रकार से मनुष्य का पलायन है, और पलायन कभी सत्य का स्थान नहीं ग्रहण कर सकता। इस तरह मृत्यु की सर्वांत प्रधानता मनुष्य द्वारा निर्मित सौंदर्य और प्रभु के पावन प्रतीकों को फिर दबोच लेने में समर्थ हुई। ज्ञान से एक अनजान फैंटेसी और अनजान फैंटेसी से तर्कास्थित ज्ञान की ओर लौटना ही मनुष्य की शताब्दियों की यात्रा का वह रहस्य है जिसके भीतर से उसकी वैचारिक विडंबना को समझा जा सकता है। अनजान आस्था से तर्कास्थित अनास्था की ओर लौटने का क्रम ही उसके विचारों का क्रम है। इसीलिए मृत्यु की अंतर्ध्वनि और प्रधानता, एक विचित्र प्रकार की निरर्थकता का खौफ, एक ऊब और कारुणिक असहायता की अनुभूति आधुनिक काव्य और आधुनिक मनुष्य की चिंता का अंग बन गई है। उसके सारे चिंतन और रचनाकारिता का प्रधान स्वर मृत्यु की शक्तिमत्ता का स्वर बन गया है। निराला की मृत्यु संबंधी रचनाओं को इन्हीं विचार सारणियों से समझा जा सकता है। इस नज़रिए से देखने पर निराला अतिशय आधुनिक और अतिशय पुरातन दोनों ही लगते हैं। एक ओर तो उसमें मृत्यु की सीमा का सहज स्वीकार मिलता है, दूसरी ओर प्रभु की फैंटेसी में अंततः उनका आत्मसमर्पण उन्हें पुरातन बनाता है। यद्यपि वह जगह जगह प्रार्थना की व्यर्थता और मृत्यु की सर्वांत व्यापकता और शक्तिमत्ता का उद्घोष करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वह यहीं ठहर नहीं जाते, बल्कि इसकी जगह प्रभु की इस तर्कातीत फैंटेसी को अपने जीवन में पुनः उतारते हैं। आधुनिक मनुष्य के रूप में निराला का यह निर्णय आश्चर्य में डालता है, लेकिन उनकी भौतिक विडंबनाओं से उत्पन्न उनकी मानसिक और शारीरिक, पृष्ठ संख्या 71, असन्नता, उदासी, पराजय, अकेलापन और आत्मजर्जरता के संदर्भों को समझने के बाद इस आश्चर्य का परिहार हो जाता है। फिर भी निराला मृत्यु के विचार को लेकर अपनी रचनाओं में रविंद्रनाथ की तरह पुराने नहीं लगते। रविंद्रनाथ अपनी मृत्यु की भावना के ऊपर प्रभु आलोक और उत्सव की फैंटेसी को सीधे सीधे आरोपित करके अपना परोक्ष विद्रोह जाहिर करते हैं। रविंद्रनाथ की दूसरी विशेषता यह भी है कि वह अपने जिए हुए जीवन को मृत्यु से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इसीलिए वह धरती की महिमा और उसके सौंदर्य से प्राप्त अपनी तृप्ति को मृत्यु के विचार के भीतर भी अत्यंत गरिमा से स्मरण करते हैं। रविंद्रनाथ मृत्यु के खौफ के ऊपर इन्हीं तीन वस्तुओं को स्थापित करते हैं: धरती और मिट्टी का अमर सौंदर्य, आलोक और प्रभु। इस तरह रविंद्रनाथ मृत्यु के खिलाफ उसी पारंपरिक विद्रोह को किसी न किसी रूप में स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं। वह मृत्यु भय की आधुनिक अनवर्तता को व्यक्त न करके उसे आलोक मंडित करते हुए धरती के सौंदर्य को मृत्यु की महत्ता के ऊपर स्थापित कर उसे एक उत्सव का रूप दे देते हैं। निराला में इसकी जगह आधुनिक मन का मृत्यु से सीधा आमना सामना और उसके खौफ और विनाश की सहज स्वीकृति है। प्रभु में उसका अवसान भी बहुत कुछ निजी है। उसे तुलसीदास को कृपा भाव या रविंद्रनाथ की दार्शनिकता के स्तर पर उठाने का प्रयत्न निराला ने कभी नहीं किया है। निराला की प्रार्थनाएं बिल्कुल निजी नैराश्य की प्रार्थनाएं हैं। रविंद्रनाथ की तरह प्रार्थना को एक व्यापक दार्शनिक विचार से मंडित करने के पक्ष में निराला नहीं है। मृत्यु के इस खौफ के सहज सीधे आत्म स्वीकार के कारण ही निराला रविंद्रनाथ से आगे के आधुनिक चिंता के कवि ठहरते हैं। रविंद्रनाथ मृत्यु के खौफ को एक व्यक्तिगत आलोक से पराजित करते हैं या पराजित करने की मुद्रा अपनाते हैं। निराला मनुष्य के पौरुष और उसकी सत्ता को इस मुद्रा तक नहीं ले जाते, बल्कि उसकी सीमा का सहज स्वीकार ही उनके मृत्यु गीतों में व्यक्त हुआ है। इससे यह साबित नहीं होता कि निराला से रविंद्रनाथ में मृत्यु का खौफ कम है। बार बार आलोक और सौंदर्य से उसे मंडित करने की रविंद्रनाथ की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का अगर अध्ययन किया जाए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि मृत्यु का निरंतर भय ही उन्हें बार बार इस तरह उसे झुठलाने की ओर अग्रसर करता है। रविंद्रनाथ जिस तरह मृत्यु को बंधु माँ कहकर संबोधित करते हैं, यह संबंध स्थापन का प्रयत्न ही उनके मन के भय को प्रकांतर में व्यक्त कर देता है। निराला में इतने पेच या इतने घुमाव नहीं हैं, बल्कि इसकी जगह मृत्यु का सीधा सहज स्वीकार है। यहाँ दोनों कवियों के एक एक उदाहरण से मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। पृष्ठ संख्या 72। एक, निविड़ विपिन पथ अराल, भरे हिंस जंतु व्याल, मारे कर अंधकार बढ़ता है अनिर्वार, द्रुम बितान नहीं पार, कैसा है जटिल जाल, नहीं कहें सुजलाशय सुस्थल गृह देवालय, जगता है केवल भय केवल छाया विशाल, अंधकार के दृढ़ कर बंधा जा रहा जर्जर, तन उन्मीलन निस्वर मंद्र चरण मरण ताल। दो, हिंस राति आसे छुपे छुपे, गत बल शरीरे शिथिल, अर्गल भेड़े दिए अंतरे प्रवेशे करे, हरण करते थाके जीव नेर गौरवेर रूप, कालिमार आक्रमणे हार माने मन, ए पराभवेर लज्जा, ए अवसादेर अपमान, यखन घनिये ओठे सहसा दिगंते देखा दे, दिनेर पताका खान स्वर्ण किरणेर रेखा आका, आकाशेर एन कोन दूर हते उठे ध्वनि मिथ्या मिथ्या बलि, प्रभातेर प्रसन्न आलोके दुख विजयीर मूर्ति देखी आपनार, युड़दिह दुर्गेर शिखरे। दोनों कविताओं का मूल कथ्य मृत्यु का सर्वनाशकारी भय है। निराला उसे घने सनसनाते हिंस जंगली जानवरों से भरे वन के बिंब से व्यक्त करते हैं। और पृष्ठ संख्या 73। रविंद्रनाथ उसे हिंस राति के बिंब से। रविंद्रनाथ का बिंब वैसे भी बहुत साधारण और इकहरा है। उनकी कविता का मूल उद्देश्य मृत्यु द्वारा जीवन को समाप्त करने का प्रयत्न को असफल करके जीर्ण देह के दुर्ग शिखर पर अपनी अपराजेय मूर्ति की स्थापना है। मृत्यु के पराभव और लज्जा अपमान के घने होते ही उसको आलोकित करने वाला प्रकाश फूटता हुआ उन्हें दिखाई देता है। सहसा मृत्यु के भय के विरुद्ध उन्हें मिथ्या मिथ्या की ध्वनि सुनाई पड़ती है। रविंद्रनाथ हिंस रात्रि के भीतर से आई हुई मृत्यु द्वारा जीवन गौरव को खोने नहीं देना चाहते। वे तुरंत उसे आलोक मंडित करते दिखाई देते हैं। मृत्यु के संबंध में रविंद्रनाथ की मूलभूत वैचारिक मना स्थिति यही है। निराला अपनी इस पूरी कविता को कहीं भी मृत्यु भय पर विजय प्राप्त करने के लिए विभाजित नहीं करते। उसमें क्रियाओं का कमतम प्रयोग है। केवल घने सनसनाते वन की बिंबमालाओं के सघन उपयोग से उस भय की सृष्टि की गई है। मृत्यु का सहज स्वीकार व्यक्त किया गया है। अंधकार घहरा घहरा कर बढ़ता है, कहीं प्रकाश की कोई किरण नहीं दिखाई देती। द्रुम बितान का इतना जटिल जाल फैला हुआ है कि सूर्य की किरणें उसे भेद कर अंदर तक प्रवेश नहीं कर सकती। कहीं कोई सुजलाशय जीवन रस स्रोत नहीं दिखता, कहीं कोई शरण नहीं है, मुक्ति के लिए प्रार्थना गृह नहीं दिखाई देता। केवल अंधेरे की एक विशाल छाया यहाँ से वहाँ तक फैली हुई है। इस भयावह अंधेरे की मुट्ठियों में धीरे धीरे जर्जर शरीर बनता और बंद होता जा रहा है। मुक्ति के लिए कोई स्वर झनकार, कोई चीख, कोई आवाज, कोई आह तक नहीं निकलती। धीमे धीमे चलते हुए चरण जैसे मृत्यु के आगमन पर ताल दे रहे हैं। यह है निराला का बिंबों के सघन रचाव द्वारा अभिव्यक्त मृत्यु का सहज साक्षात्कार। उससे कहीं पलायन नहीं है, किसी आलोक की तलाश का प्रयत्न नहीं है। संवेदना के स्तर पर इस अंतर के अलावा दोनों कविताओं की भाषिक संरचना और सघन रचावगत कलात्मकता से भी बहुत अंतर है। रविंद्रनाथ की पूरी कविता एक सोचे हुए विचार दर्शन में बदल जाती है। उसमें उक्ति कथन अधिक लगता है। उसकी पूरी भाषिक संरचना भी इकहरी है और बिंबों का कलात्मक सघन रचाव नहीं मिलता। निराला में एक पूरी बिंबमाला तह दर तह उभरती रचती जाती है। जैसे जैसे कविता आगे बढ़ती जाती है, बिंबों की सघनता बढ़ने के साथ साथ मृत्यु की सघनता भी सनसनाती हुई बढ़ने लगती है। रविंद्रनाथ में पूरे वाक्यों का उपयोग भी उनकी कविता को सपाट बनाता है, जबकि निराला ने अपनी कविता में वाक्य की जगह शब्द संकेतों या अधूरे वाक्य संकेतों का आधार अधिक लिया है। निराला की कविता में प्रयुक्त छंद दुर्गा सप्तशती के छंद के मेल से रचा गया है। इस पृष्ठ संख्या 74 तरह उनकी पाठ ध्वनि ही उस मृत्यु भय की भयावहता को चित्रित करती चलती है। दरअसल निराला वाक्य को शब्द और फिर शब्द को केवल नाद तक लाकर कविता के अर्थ प्रसार को सघन और संकेतित करते हैं। रविंद्रनाथ की इस कविता की अगर सिंफनी बनाई जाए तो उससे शुरू में सारंगी की, ट्रेजिक मींड और बाद में सितार की उत्फुल्ल स्वर झनकार पहाड़ी झंझोटी में उपयुक्त होगी। निराला की कविता में लगातार पृष्ठभूमि में नगाड़े की ढम ढमम ढम ढमम सुनाई पड़ती है, जो धीरे धीरे लगातार अनवरत बढ़ती जाती है। दोनों की सिंफनी रचना का यह अंतर ही भय पर दुख विजयी रूप रविन्द्रनाथ और भय की अनवरतता निराला के अंतर को स्पष्ट कर देता है। निराला में अपराजेय मृत्यु सजीव होकर उनके चरण ताल पर थप थप करती हुई आती दिखाई देती है। रविन्द्रनाथ की कविता में वह दृश्य कम है, सूच्य ही अधिक लगती है। कवित्व और कलात्मकता तथा संवेदनाग्रस्त इस अंतर के कारण निराला कई मायनों में रविन्द्रनाथ से बड़ी प्रतिभा के कवि ठहरते हैं। रविन्द्रनाथ का यह मृत्युंजय भाव तरह तरह से व्यक्त होता है। कभी वे अपने मृत्यु दिन को जन्मदिन के आमने सामने बैठा हुआ पाते हैं, उन्हें दोनों प्रकाश के समान दिखते हैं, दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं दिखाई देता। दिन के अजस्र आलोक का ऋण वे मृत्यु के द्वारा ही चुकाने की कल्पना करते हैं, इसलिए मृत्यु उनके लिए विनाश या अंतिम विराम नहीं है। उन्हें अपनी कीर्ति पर भी उतना विश्वास नहीं है, उन्हें अपने निज पर सबसे अधिक आस्था है। वह निजत्व जिसने इस धरती के सौंदर्य को छक कर पान किया है, प्रतिक्षण प्रेम किया है, स्नेह पाया है, दिया है। मनुष्य के प्रेम में उन्होंने जीवन के अमृत तत्व का आशीर्वाद पाया है, इसीलिए निराला की तरह उन्हें हट रहा मेला की अनुभूति नहीं होती। वे आगे पीछे दाएं बाएं आने वालों से हटने की प्रार्थना नहीं करते। वे आसन्न मृत्यु के साथ भी परिजनों का स्नेह स्पर्श चाहते हैं। वे जानते हैं कि मृत्यु के बाद यही प्रीति रस, यही पृथ्वी की अनुपम सौंदर्य का गहन अनुभव वे अपने साथ ले जाएंगे। इसी तरह वह बार बार मृत्यु भय के ऊपर अपनी विजयी मूर्ति की, अपने मृत्युंजय रूप की कल्पना करते हैं। मनुष्य जीवन और इस पृथ्वी के सौंदर्य के प्रति उनकी यह अंततः आस्था दर्शनीय है। उसमें कहीं भी क्षीणता, विनष्टता, समाप्त प्रायता का एहसास नहीं है। दैन्य और करुणा से वह कहीं भी निराला की तरह आत्म जर्जर नहीं होते। उनमें कहीं भी वह निरंतर चलने वाला गहरा कटाव और आतंक क्षय दृष्टिगोचर नहीं होता। वह नैराश्य और एकाकीपन से ऊपर उठकर मनुष्य जीवन में अपनी अनंत आस्था और आत्मविश्वास की घोषणा करते हैं। इस रूप में रविंद्रनाथ दरअसल शक्ति संपन्न एक महामानव दिखाई देते हैं। पृष्ठ संख्या 75 एक ए जीवने सुंदरेर पयेछि मधुर आशीर्वाद मानुषेर प्रीति पात्रे पाई तारी सुधार अस्वाद दुसह दुखेर दिने अक्षत अपराजित आत्मारे लये छि आमिचिने आसन्न मृत्युर छाया ये दिन करे छि अनुभव से दिन भयेर हाते हयनि दुर्बल पराभव महत्तम मानुषेर स्पर्श हते हयिनि वंचित तादेर अमृतवाड़ी अंतरेते करे छे संचित दो दिने दिने पेये छिनु सत्येर या किछु उपहार मधुरसे क्षय नायितार ताई एई मंत्रवाणी मृत्युर से शेर प्रांते बाजे, सब क्षति मिथ्या करे, अनंतेर आनंद विराजे, शेष स्पर्श निये याब, यबे धरणीर बले याब, तोमार धूलिर तिलक परे छिभाले। 3. आमार कीर्ति रे आमी करी ना विश्वास, जानी काल सिंधु तारे, नियत तरंग घाते, दिने दिने दिबे लुप्त करी, आमार विश्वास आपनारे, द्विवेला से पात्र भरे, ए विश्ववेर नित्य सुधा करिया छिपान। 4. आमी मृत्यु चेय बड़ो, एई शेष कथा बले, याब आमी चले। निश्चय ही यह शक्तिमंत आस्थावान वाणी किसी साधारण मनुष्य की वाणी नहीं है, आसन्न मृत्यु की छाया में भी पराभव नहीं होगा, दुर्बलता विषणता नहीं घेरेगी। क्यों? क्योंकि रविंद्रनाथ निराला की तरह मनुष्य के महत्तम स्नेह स्पर्श से वंचित नहीं है, उन्हें रिक्तता और अकेलेपन का कभी एहसास नहीं हुआ, बल्कि मनुष्य के महत्तम स्पर्श को उन्होंने भरपूर पाया है। उनके जीवन में कहीं कोई खालीपन नहीं है, वे बार बार जीवन को भरपूर जीने के अपने अनुभव के प्रति कृतज्ञ हैं। उनकी मृत्यु संबंधी कविताओं में उनका यही कृतज्ञता ज्ञापन अभिव्यक्त हुआ है। कहीं क्षय नहीं है, आत्म क्षय की तो बात ही दूर है, अपनी कीर्ति से भी बड़ा। पृष्ठ संख्या 76, वह जीवन का मिला हुआ आशीष है जिसे कवि ने भरपूर भोगा है। कीर्ति धीरे धीरे समय के अंतराल में लुप्त हो जाएगी, लेकिन यह जीवन को भरपूर जीने का अनुभव नष्ट नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य का अमृत तत्व, उसका आशीष बूंद बूंद जो कवि के जीवन में संचित हुआ है, उसका क्षय संभव नहीं है। इसी भूमि पर आकर रविंद्रनाथ कहते हैं कि प्रस्थान के समय मैं यह उद्घोषणा करके जाऊंगा कि मैं मृत्यु से बड़ा हूँ। आम मृत्यु का चित्रण भी चेये बड़ो, मृत्यु से बड़े होने के अपने इसी शक्तिमंत अनुभव के कारण रविंद्रनाथ मृत्यु का चित्रण भी जगह जगह एक उत्सव की तरह करते हैं। वह सिर्फ उसकी सत्ता की साधारणता ही नहीं घोषित करते, वह सिर्फ उसके ऊपर अपने दुख विजयी रूप की मूर्ति ही नहीं स्थापित करते, बल्कि फिर मृत्यु का आगमन भी भयकारक न रहकर एक उत्सव का रूप ले लेता है। मृत्यु का यही उत्सवमय चित्रण उनकी कविताओं में जगह जगह हुआ है।